مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. تو پہلے تو ہم آپ سے سوری کرتے ہیں، معذرت، کہ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو کہا تھا کہ غزوہ بدر کا واقعہ ختم ہو گیا، لیکن وہ ختم نہیں ہو گئے تھے. ماشاء اللہ، غزوہ بدر ہے ہی کہ ایسا ہے نا، کہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، فرق بین الحق والباطل، ہے نا، باطل میں اور حق میں اللہ تعالیٰ نے سپریشن کر دی تھی. ٹھیک ہے، تو یوم الفرقان، یوم بدر، تو اب اتنا اہم ہے کہ ہم اس میں پھر ایک اور بات آپ کو بتا کر کے پھر انشاءاللہ اسی کلاس میں کوشش کریں گے کہ آگے بڑھ جائیں. ٹھیک ہے، تو اس میں نا ایک اور بات جو بڑی بڑی زبردست پڑھنے کو ملی، تو وہ یہ ہے کہ بدر کے موقع کے اوپر کتنے کافر مرے تھے، یہ تو آپ بتا رہے ہیں، 70. اور کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے، یہ آپ بتا رہے ہیں، 14 مسلمان شہید ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور 70 کافر مرے تھے، اور 70 ہی کافر جو ہے ان کو قیدی بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اب جو 14 مجاہدین مومنین شہید ہوئے تھے نا، تو ان کے بھی علماء نے کافی، ان میں سب کے تو نہیں لیکن کافی کے واقعات لکھے ہیں، کچھ کچھ ڈیٹیلز لکھی ہیں. ٹھیک ہے، 1000 کافر تھے. ہاں، باقی جو کچھ تو پہلے ہی بھاگ گئے تھے شروع میں نا، وہ تھوڑے سے واپس چلے گئے تھے، تھوڑے سے بہت، وہ ان کی ایگزیکٹلی نمبرز نہیں ہیں موجود، لیکن ہو سکتا ہے کوئی 900-950 کو اتنے کافر تو رہ گئے تھے. تو 70 مارے گئے تھے، 70 جو ہے وہ قید ہو گئے تھے، اور باقی بھاگ کے واپس پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے، اچھا، تو ان میں سے چندے کے واقعات پڑھ کے ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ان میں ایک تھے حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بھائی کا نام بڑا مشہور ہے، ان کے بھائی کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ان کے بڑے بھائی تھے. ٹھیک ہے، تو عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو تھے نا، یہ چھوٹے تھے، اور ان کی عمر کتنی تھی، 16 years، ہے نا، آپ میں سے اکثر کے تقریباً برابر ہی عمر تھی، 16 سال. ٹھیک ہے، تو یہ نا بدر میں پہنچ گئے تھے، لیکن ان کو جب پتا لگ گیا نا کہ اب تو یہاں پر ہونے والی ہے لڑائی، تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تو اتنا چھوٹا ہوں کہ مجھے تو نبی علیہ السلام السلام نا واپس کر دیں گے، واپس بھیج دیں گے. تو یہ جو ہے نا، وہ نبی علیہ السلام السلام سے چھپنا شروع ہو گئے، کبھی ادھر چھپتے، کبھی ادھر بھاگتے، کبھی ادھر دوڑتے، تو وہ ادھر ادھر چھپ رہے تھے. تو ان کے بڑے بھائی سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیوں، کیا ہو گیا آپ کو، ادھر ادھر کیوں دوڑتے پھر رہے ہیں، ادھر ادھر چھپنے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی مجھے یہ ڈر ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا نا، تو مجھے چھوٹا سمجھ کر کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھیج دیں گے، اور میں یہاں سے واپس نہیں بھیجنا چاہتا، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو شہادت نصیب کروا دے. ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب لشکر کا معائنہ کر رہے تھے نا، آخر میں جو صفیں وغیرہ بنا دی تھیں، اس کے بعد دیکھ رہے تھے، تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ لیا، تو ان کو پھر حکم دیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ چھوٹے ہیں. انہوں نے وہیں پر رونا شروع کر دی. 16 سال کے تھے، 16 سال اتنا بھی چھوٹی عمر نہیں ہے. آپ 16 سال کے ہیں، آپ 14 کے ہیں، آپ کے بڑے بھائی نہیں، یہ تو چھوٹا ہوں، تو آپ 14 ہیں، یہ خیر آپ لوگ بھی بڑے ہو گئے، 18 سال کے، کوئی 19 سال کے ہو گئے. تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، جب نبی علیہ السلام السلام نے ان کو اتنا روتے ہوئے دیکھا نا، تو اتنا ذوق شوق دیکھ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اور انہوں نے لڑائی کری. اب ظاہر ہے وہ تو ایسے ایسے ایکسپرٹس تھے، تو یہ پھر شہید ہو گئے. ٹھیک ہے، تو شہداء میں ایک جو ہیں وہ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اچھا، ایک اور شہید کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہ رہے ہیں، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن ایک کا ذکر، ان کا نام عاقل بن البکیر مہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاقل بن البکیر. ٹھیک ہے، یہ بالکل شروع میں یہ تھے تو انصاری، ٹھیک ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، لیکن یہ نا، یہ نہیں مدینہ منورہ نہیں، یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، اور یہ بالکل شروع میں مسلمان ہو گئے تھے جب نبی علیہ السلام نے ऐलान किया था अपनी नबूवत का। तो ये साबिकून अव्वलून में से, यानी साबिकून अव्वलून का मतलब क्या होता है, वो लोग जो कि सबकत रह गए दूसरों से। सूरह वाकया के अंदर ना वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, ठीक है, तो ये उनमें से थे। जब ये मुसलमान हुए ना तो इनका नाम जो था वो आकिल नहीं था, बल्कि इनका नाम क्या था, किसी को पता है, बड़ा मजे का इनका नाम था, इनका नाम था गाफिल। गाफिल किसको कहते हैं, हीडलेस, है ना, जो कि गफलत नहीं पड़ा हो, जिसको कुछ पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है क्या करना चाहिए, इसको कहते हैं गाफिल इंसान, ठीक है। तो वो लोग ऐसे ऐसे नाम रख देते थे, किसी का नाम जैसे हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर किसी का नाम है ना वो सांप रख दिया, किसी का नाम बिच्छू रख दिया, किसी का नाम जो है वो किसी बुत के नाम के ऊपर रख दिया, कभी ऐसे उल्टे सीधे नाम वो लोग रख दिया करते थे ना। तो इनका नाम था गाफिल। जब नबी अलैहिस्सलाम ने इनको कलमा पढ़ाया ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, तुम गाफिल नहीं हो, तुम तो आकिल हो, ठीक है ना। नबी अलैहिस्सलाम ने इनका नाम रख दिया इंटेलेक्चुअल, है ना, द पर्सन विद इंटेलेक्ट, अकल वाला इंसान, क्योंकि तुमने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया है, तुमने अकल वाला फैसला कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम तब्दील कर दिया करते, तो इनका भी जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम तब्दील कर दिया, और ये भी बदर के अंदर आए, और 34 इयर्स की उनको उनकी उस वक्त तक एज हो चुकी थी, और ये भी बदर में शहीद हो गए। एक आखिरी सहाबी शुहदाए बदर में से जिनका आपके सामने तस्करा करना था, वो है, बड़े मजे की बात, जिन्होंने कल का बयान सुना था ना उनको फिर आज की बात पूरी समझ में आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। उनका नाम था साद बिन खुसैमा रजी अल्लाह ताला, साद बिन खुसैमा अंसारी रजी अल्लाह ताला, ठीक है। तो साद रतान जो है ये अंसारी थे, और ये उस वक्त मुसलमान हो गए थे कि जब नबी अलैहिस्सलाम हज के मौके के ऊपर मदीना मुनव्वरा से आने वाले लोगों से बैत ले रहे थे ना, उकबा के मौके पर बैत उकबा, तो ये वहां पर मुसलमान हो गए थे, ठीक है। अच्छा, जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया ना कि चलो बदर के लिए, ठीक, बदर के लिए चलो का मतलब क्या था असल में, अबू सुफियान के उसके ऊपर हमला करने के लिए, ठीक है। तो अब हमला करना था, तो अगरचे के फुल फाइटिंग का तो उस वक्त तक पता नहीं था, ठीक है, कि आगे जाके 1000 का लश्कर आ जाएगा और उनसे ऐसी किस्म की लड़ाई होगी, ये सब तो नहीं पता था, लेकिन फिर भी एक सफर था, और सफर के अंदर जो है वो हमला तो करना था ना, तो हमला करने में भी तो कुछ गार्ड वार्ड होते हैं ना, तो वहां से भी लड़ाई तो हो सकती है, तो देयर वाज अ चांस कि यहाँ पर शहादत मिल जाएगी, ठीक है। तो साद बिन खुसैमा जो थे ना, इनको चाहिए थी शहादत, ठीक है। तो इनके घर में इनके जो वालिद साहब थे ना, खुसैमा, साद बिन खुसैमा नाम है, तो वालिद का नाम था खुसैमा, वो भी मुसलमान थे, तो वो भी जाना चाहते थे, ठीक है, साद भी जाना चाहते थे, उनके अब्बू भी जाना चाहते थे। तो अब्बू ने बेटे से कहा कि बेटा घर में ना बच्चे हैं और औरतें हैं, ठीक है, तो हम दोनों इस सफर पे नहीं जा सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया था कि भाई जिहाद के लिए निकलो, बहुत सारे लोग नहीं जा सके थे ना बदर में, ठीक है, तो हुक्म तो था नहीं, तो लेकिन जाना चाहते थे ये दोनों, ठीक है। तो अब्बू ने बेटे से कहा कि बेटा हम दोनों तो जा नहीं सकते, ठीक है, तो तुम ऐसा करो कि तुम जो है ना इस दफा मुझे जाने दो, ठीक है, बाप जाना चाहते थे अब्बा, तो तुम इसार करो। इसार का मतलब क्या होता है, गिव मी प्रेफरेंस ओवर यू, ठीक है, तुम मुझे प्रेफर कर दो कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ चला जाऊं, ठीक है, तुम ना जाओ, तुम नेक्स्ट टाइम चले जाना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब इस किस्म का मौका मिलेगा। इन्होंने कहा नहीं अब्बू, ये तो ऐसा मौका है, मैं इसार नहीं करूंगा, कोई और बात होती ना मैं आपके ऊपर अपनी हर चीज सुबान कर देता, ठीक है, मैं आपकी बात मानता, मैं आपके ऊपर जो है ना वो अपनी किसी भी चीज को, आप मुझसे कहते हैं कि भाई तुम अपनी ये चीज मुझे दे दो, आप मुझे कहते हैं मेरा कोई अपना कोई ड्रेस मुझे दे दो, या अपना कोई खाने की चीज मुझे दे दो, अपने कोई है ना अपने कोई तलवार मुझे दे दो, कुछ दे दो, मैं आपको दे देता, आप मेरा अब्बू हैं, आपकी अतात जो है वो मेरे ऊपर वाजिब है, ठीक है ना, बाप की अतात औलाद के ऊपर वाजिब होती है, अनलेस के वो कोई गुनाह का हुक्म दे, ठीक ना, वरना तो वाजिब होती है, ठीक है, तो मैं आपके लिए हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन नॉट दिस वन, ये मैं आपके ऊपर कुर्बान नहीं करूंगा, ठीक है। तो फिर इन दोनों का फैसला क्या हुआ, उन्होंने कहा कि चलो आप ऐसा करते हैं कि हम जो है ना वो कुरान निकालते हैं, ठीक है ना, लेट्स ड्रॉ लॉट्स, ठीक है, कुरा निकालते हैं, जैसे वो टॉस करते हैं ना टॉस कि अगर ये आया तो आप चले जाइएगा और अगर ये वाला साइड आए तो मैं चला जाऊंगा। तो इन लोगों ने कर लिया आपस में टॉस। टॉस जो किया ना तो नाम किसका निकला, साद बिन खुसैमा का निकला, बेटे का नाम निकला। ठीक है, तो उन्होंने कहा अब्बा आई एम गोइंग, ठीक है ना, आप यहीं पर हैं, ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। सही है, तो साद रतन जो है वो बदर में गए और बदर में जाकर के शहीद हो गए। ठीक है, और खुसैमा रज़ियल्लाहु अन्हु वो भी तैयार थे, बदर में नहीं जा सके लेकिन उहद में तो गए और उहद में जाकर के खुसैमा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए। ठीक है, तो ये जो थे ना साद रतन शुहदाए बदर में से, सहाबी इब्ने सहाबी, शहीद इब्ने शहीद, ठीक है, इनका ये एहसास है कि शहीद भी थे और शहीद के बेटे भी थे, सहाबी थे और सहाबी के बेटे भी थे। कल का बयान किसको याद है? तो कल के बयान के अंदर इससे बता लेते एक बात हुई थी, वो क्या थी किसी को याद? बच्चों बड़ों ऑनलाइन ऑफलाइन सबसे सवाल है कि कल के बयान के अंदर इस टॉपिक के ऊपर एक बात हुई थी, ठीक है, याद? जी रहे हम,
बाप की बात सुनकर
हाँ
उनका कहने
हाँ गुनाह की बात तो नहीं मान सकते, हाँ हाँ गुनाह की बात नहीं मान सकते, ठीक है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है ना गुनाह ना करो, ठीक है ना। तो अगर अब्बू कहते हैं या अम्मी कहती हैं कि गुनाह करो तो उस वक्त अल्लाह का हुक्म, ठीक है ना, वो ज्यादा पड़ा है ना, अल्लाह ताला ने अब्बू अम्मी दी है, भाई अब्बू अम्मी खुद से थोड़ी आ गए थे, ठीक है, कहाँ से आए अब्बू अम्मी, अल्लाह ताला ने दी है ना, तो अल्लाह ताला का हुक्म तोड़ करके अब्बू अम्मी का हुक्म नहीं मान सकते, ठीक है। लेकिन जब कोई जायज बात का हुक्म दे रहे हैं तो वो तो मानना लाजमी, ठीक है। अच्छा, तो कल के बयान के अंदर कौन सी ऐसी बात हुई थी कि जिसका इसके साथ ताल्लुक? जी अरफान,
हम अपने और कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं लेकिन आखिर नहीं कर सकते, जिससे मतलब नहीं।
पहुंच तो गए अब वैसे माशाल्लाह वहां पे। अब किसी को मदीद कुछ याद आया, वो टर्म याद आई? मुश्किल
एरिया ऑफ
तो वर्ड तो था। जी जी बताइए। जी माशाल्लाह, ईमान वाला डजंट हैव इसार, ईमान वाला डजंट हैव इसार, ईमान वाला ही तो इसार करता है, ठीक है, लेकिन नॉट ऑन हिज और हर एरिया ऑफ नॉन एनक्रोचेबल, ठीक है ना। काफिर या ऐसे ही गुनाहगार अगर मुसलमान है ना, दुनियादार मुसलमान है, तो उसका एरिया ऑफ नॉन एनक्रोचेबल क्या होता है? उसका घर, उसका कमरा, दिस इज माई रूम, दिस इज माई स्पेस, नो वन कैन एंटर माई स्पेस, है ना, मी माई सेल्फ माइंड, अंग्रेजी में कहते हैं माइंड, दिस इज माइंड, है ना, आप इधर नहीं आ सकते, स्टे आउट, ठीक है। तो ये होता है काफिर का या फासिक फाजिर इंसान का एरिया ऑफ नॉन एनक्रोचेबल दुनिया के अंदर, ठीक है। ईमान वाले का दुनिया में कोई एरिया ऑफ नॉन एनक्रोचेबल नहीं होता। ईमान वाला कहता है भाई जो मेरा है वो आपका है, ठीक है ना, आप मेरे दीनी भाई हैं, आप हमारे ईमानी भाई हैं और अल्लाह ताला ने हमें इशार करने का हुक्म दिया है। सहाबा कराम जो है वो इशार किया करते थे, इशार के ऊपर कौन सी आयत है? वयुसिरून अला अनफुसहिम वलो काना बिहिम खसासा, कि ये अपने ऊपर जो है ना वो दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे कि इनको ज्यादा जरूरत होती है। जैसे कि सहाबा कराम जो है वो भूखे थे, प्यासे थे, उनके पास खाने की चीज थी, पीने की चीज थी, ठीक है, लेकिन दूसरे सहाबी की आवाज आई प्यास प्यास प्यास, तो इनके पास जो पानी था अगरचे कि इनको भी शदीद प्यास लगी हुई थी, जख्मी पड़े हुए थे, बस मरने के करीब थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा, नहीं मैं नहीं पीऊंगा, उनको जाकर के दे दो, है ना। तो उनके पास पहुंचे पानी पिलाने के लिए तो उनको आवाज आई एक तीसरे सहाबी की प्यास प्यास अतश अतश, ठीक है, इन्होंने कहा नहीं मैं नहीं पीऊंगा, उनको जाकर के दे दो, ठीक है। तो वो तीसरे सहाबी के पास चले गए, वहां पर उन्होंने पिलाने की कोशिश करी लेकिन वो पहुंचने से पहले ही शहीद हो चुके थे, उनकी जान निकल चुकी थी। अब ये दूसरे वाले के पास आए, उनकी भी जान निकल चुकी थी। अब ये पहले वाले के पास आए, उनकी भी जान निकल चुकी थी। तो ईमान वाले ऐसा ही इसार करते हैं, अपनी जान निकल रही होती है लेकिन खाना पानी किसी दूसरे को दे देते हैं, ठीक है ना। इस किस्म के वाकयात सहाबा की जिंदगी में भरे पड़े हुए हैं, अल्लाह ताला कुरान में इसका जिक्र फरमाते हैं। लेकिन ये है दुनियावी इसार, दुनिया के मामलात के अंदर इसार, खाना दे दिया, पानी दे दिया, कुछ और जरूरत की चीज थी वो दे दी, ठीक है, नॉट ऑन आखिरत, आखिरत में इसार नहीं, ठीक है ना, आखिरत में और कबर के अंदर वहां पे इसार नहीं कि भाई अब्बू आपकी खातिर मैं अपनी आखिरत के अंदर मुझे जो है वो नंबर वन पोजीशन मिलने वाली है, आपके खातिर मैं नंबर वन पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कर दूं? नहीं, मैं अपनी नंबर वन पोजीशन को जन्नत के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ठीक है जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कर सकते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर आपने कोई चीज छोड़ी ना, तो फिर तो आपको ऊपर की पोजीशन मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर आपने कोई काम किया तो आपको तो ऊपर की ही पोजीशन मिलेगी। ठीक है, बहरहाल बदर के मौके के ऊपर ये एक थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा सा समझ में आएगा आपको, लेकिन आ जाएगा इंशाल्लाह बाद में। तो आखिरत को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ठीक है ना। तो कोई अगर आपसे कहे कि भाई तुम ऐसा गंदा काम कर लो जिसकी वजह से तुम्हारी आखिरत खराब हो जाए, नहीं सॉरी, मैं आपके लिए गंदा काम नहीं कर सकता, मैं आपके लिए गुनाह का काम नहीं कर सकता, आखिरत को मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। ठीक है, अब्बू के लिए इन्होंने आखिरत में क्या चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं करी? ठीक है, शहादत कॉम्प्रोमाइज नहीं करी। ठीक है, एक और चीज भी है, एक और चीज बताने से पहले हम आपको एक और हदीस सुनाते हैं, ठीक है, उसका तर्जुमा सुनाते हैं। बल्कि वो हदीस ये है कि नबी अलैहिस्सलाम से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, एक मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अहले बदर को कैसा समझते हैं, आप अहले बदर को कैसा समझते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सबसे अफजल और बेहतर, सबसे अफजल कौन है? बदर के जो बदर में शामिल हुए वो सबसे अफजल है। ठीक है, तो उसके ऊपर पता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? जी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, और जो फरिश्ते बदर के अंदर शामिल हुए थे वो फरिश्ते भी सारे फरिश्तों से ज्यादा अफजल। ठीक है, तो बदर की ये खास बात है कि जो मुसलमान बदर में शामिल हो गए वो सबसे अफजल हो गए, और जो फरिश्ते बदर में शामिल हो गए वो भी सबसे अफजल हो गए। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली जो है ना, ये सबसे अफजल वाला मुकाम जो है वो अपने अब्बू के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन इसके अंदर एक दूसरा भी बड़ा मजे का पॉइंट है। वो दूसरा मजे का पॉइंट क्या है कि जब ये सबसे अफजल पोजिशन पे पहुंच गए ना, ठीक है ना, और इनके अब्बू कौन सी पोजिशन पे पहुंचे, उहद में शहीद होकर के कौन सी पोजीशन में पहुंचे होंगे जन्नत में? सेकंड बेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि उहद वाले बदर का मुकाबला नहीं कर सकते, सेकंड बेस्ट। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला तो फिर अल्लाह ताला है ना भाई, ठीक है ना, अल्लाह ताला भी बड़े कदरदान है, अल्लाह ताला को सारी स्टोरी पता होती है। ठीक है, तो जन्नत में जाने के बाद एक और भी मामला होगा, वो क्या याद है आपको? अभी बात हुई थी परसों या कल, जन्नत में आगे क्या होगा? जी ठीक है, जो ऊपर होंगे ना वो नीचे वालों को क्या करेंगे? ऊपर उनको पुल करेंगे ऊपर। ठीक है, ए अल्लाह यहाँ पे हमें मजा नहीं आ रहा, राइट, अब्बू के बगैर मजा नहीं आ रहा। ठीक है ना, अब्बू से मोहब्बत करते थे, अब्बू बहुत अच्छे थे, ठीक है ना, अब्बू ने जो है वो ठीक है भाई बात मान ली, उन्होंने मुझे मारा नहीं कि नहीं अब बैठो मैं जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कहना अब्बू ने, ठीक है ना, तो अब्बू ने मुझे इजाजत दी ना जाने की। अब ये कैसे हो सकता है कि मैं तो नंबर वन पोजीशन पर हूँ और अब्बू साहब जो है नंबर टू पोजीशन पर है, ये कैसे हो सकता है? अब्बू को भी मेरे साथ कर दी। ठीक है, अच्छा जन्नत के अंदर ऊपर वाला नीचे नहीं आएगा, ये नहीं कि मैं अब्बू के साथ जा रहा हूँ मुझे नीचे कर दीजिए, नहीं, नीचे को थोड़ी, अल्लाह ताला की जन्नत में थोड़ी कमी को थोड़ी कि ऊपर जगह फिल हो गई है, राइट, ऊपर जो नो मोर स्पेस, राइट, अब आप जो है वो नीचे जाए आप, नहीं, नीचे वाले को ऊपर लेकर के जाएंगे। ठीक है ना, तो अब्बू को ऊपर बुला लेंगे, खत्म बात, राइट, अब्बू का भी फायदा हो गया, बेटे का तो फायदा ही फायदा हो गया। ठीक है, तो ये बड़ी जबरदस्त स्टोरी थी कि यानी एरिया ऑफ नॉन एनक्रोचेबल वाला मामला यहाँ पर भी होता है, लेकिन जन्नत का मामला ऐसा है और ईमान वाले का मामला ऐसा है कि वो जब जन्नत में पहुंचता है ना, तो फिर वो दूसरे ईमान वालों को जिनसे उसको मोहब्बत होती है वो उनको भी अपने साथ ऊपर खींच लेगा। ठीक है, तो नुकसान किसी का भी नहीं होगा। अच्छा, तो अब इसके बाद जो है ना वो बदर का वाकया खत्म हुआ। ठीक है, अब हमने आपको ये तो बता चुके थे कि चूंकि अभी सेकंड हिजरी थी ना, बदर सेकंड हिजरी के अंदर कौन से महीने में हुआ था? रमजान उल मुबारक के महीने में। ठीक है, तो रमजान उल मुबारक का महीना जो है वो फिर चंद दिनों के बाद खत्म हो गया, क्योंकि 17th को हुआ था, 18, 19, 20th को गालबन नबी सल्लल्लाहु वहां से निकले थे 3 दिन के बाद, फिर आप यहाँ पे मदीना मुनव्वरा पहुंचे, फिर एक दो वाकयात थोड़े छोटे मोटे हुए और उसके बाद फिर रमजान का मुबारक महीना खत्म हो गया, शव्वाल का महीना आ गया और यकुम शव्वाल को मुसलमानों ने पहली ईद उल फितर सेलिब्रेट करी बाकायदा। ठीक है, यानी नमाज ईद के लिए गए और अच्छा एक वाकया यहाँ पर ये भी किताबों में लिखा हुआ है कि एक सहाबी थे, यहाँ पर भी एक्चुअली वही बात, जैसे वो गाफिल थे ना, जिनका नाम गाफिल था, मुसलमान हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका नाम आकिल रख दिया, बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया, है ना, गाफिल कोई थोड़ी हो तुम तो आकिल हो। उसी तरीके से एक सहाबी थे मदीना मुनव्वरा के अंदर जो थे नाबीना, ठीक है ना, उनकी आंखें काम नहीं करती थी, ठीक है। तो एक औरत थी जो कि नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी किया करती थी बहुत ज्यादा, वो आप सल्लम के बारे में गंदी बातें किया करती थी और बहुत गंदी गलीज हरकतें किया करती थी, है ना, गंदे गंदे कपड़े ला करके मस्जिद नबी के अंदर, नजिस कपड़े ला के मस्जिद नबी के फेंक दिया करती थी वहां पर, आप सल्लम के लिए गंदे गंदे शेर लिखती थी आप सल्लम की शान में, ठीक है। तो एक सहाबी थे जो कि नाबीना थे, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि मैं इस औरत को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, उन्होंने ये अल्लाह ताला से वादा कर लिया कि अगर नबी अलैहिस्सलाम सलाम, अच्छा अजीब उन्होंने वादा किया, उनकी मर्जी थी जो भी उनके दिल में बात आई, उन्होंने कहा कि भाई अगर नबी अलैहिस्सलाम सलाम बदर से फतह पाकर वापस आए ना तो मैं इस औरत को खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो जब उनको पता लगा, नाबीना साहबी थे लेकिन उन तक खबर पहुंच गई कि नबी अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह फातह होकर के बदर से वापस आए हैं, तो ये उस औरत के पास गए और खत्म कर दिया, ठीक है। कुछ किताबों में पढ़ा के गालबन यही वो औरत थी जो कि एक्चुअली इनकी इनकी वो गुलाम भी थी, बांदी जिसको कहते हैं, ठीक है, और ये इसके मालिक थे अगरचे के नाबीना थे। तो इन्होंने उस औरत को मारा और मार करके ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए। उन्होंने कैसे मारा, नाबीना एक तो टटोल टटोल के चलते हैं, ठीक है, यानी ऐसे ऐसे छू करके चलते हैं ना, दूसरा ये कि अल्लाह ताला ने जो लोग ब्लाइंड हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उनको उनकी सिक्स सेंस जो होती है ना उसको और ज्यादा शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो उनका सेंस जो है ना वो और ज्यादा ऐसी ही हो जाती है कि उनके लिए फिर चलना फिरना जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल जैसे हमारा हमारी आंख बंद करते हैं ना हमसे नहीं चला जाएगा, लेकिन जो नाबीना लोग होते हैं वो चल लेते हैं, बैलेंस उनका अल्लाह ताला दे देते हैं। खैर, जिस तरह से भी ये वहां तक पहुंचे, वहां पर जाके इसको खत्म किया और फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास ये आए, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम से इन्होंने पूछा कि अल्लाह के नबी मुझे कुछ सदा वगैरह मिलेगी, मैंने इस औरत को मार दिया, ठीक है। फिर आप सल्लम ने जो है वो सहाबा से अर्ज किया, हाँ बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि उन्होंने फरमाया सहाबा से कि ये जो नाबीना है ना इनको देखो कैसा इन्होंने छुप करके अल्लाह ताला की अतात कर दी, ठीक है ना, कि किसी को पता भी नहीं चला, इन्होंने खुद ही फैसला किया और जा करके काम करके आ गए, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनको आमा नहीं कहो, आमा कहते हैं नाबीना, इनको आमा नहीं कहो, ये तो बसीर है, ये तो बीना है, ठीक है, यानी इन्होंने तो आंखों वालों का काम किया, ये आमा कोई थोड़ी है, ठीक है। तो जाहिरी तौर पर ये अंधे हैं लेकिन इनका दिल जो है ना वो जिंदा है। तो उस वक्त जो जब इन्होंने ये काम किया था तो रमजान मुबारक के महीने के खत्म होने में 5 दिन रह गए थे। इसी तरह से एक दफा हजरत उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, इनका नाम उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु था, तो जब ये बीमार हुए ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इन्तलिकु बिना इलल बसीर, ठीक है, कि हमको उस बीना के पास ले चलो, नहीं ये नहीं कहा हमको उमैर के पास ले चलो ताकि हम उसकी इयादत करें, नहीं, हमको उस बीना के पास ले चलो, आंखों वाले के पास ले चलो, ठीक है, ताकि हम उसकी इबादत इसकी इयादत करें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक और वाकया पेश आया इसी इसी महीने में, शव्वाल के महीने में, ईद उल फितर होती है, ठीक है। तो 15 शव्वाल को एक और वाकया पेश आया, वो ये था कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो पहुंचे, यहूद के एक कबीला था मदीना मुनव्वरा में जो रहते थे, मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के कबाइल रहते थे, है ना, उनको पता है वो लोग आके सेटल हो गए थे यहाँ पर फलस्तीन से ताकि आखिरी नबी का इंतजार करें, ठीक है। जब आखिरी नबी आए तो वो चूंकि बनी इसराइल में से नहीं थे बल्कि बनी इस्माइल में से थे, तो उन्होंने इनकार कर दिया नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा आए थे तो आते ही नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के इन कबीलों के साथ कुछ मुआहिदे कर लिए, वादे कर लिए थे, ठीक है। वो क्या वादे थे कि हम एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, फिजिकल फाइटिंग नहीं करेंगे और हम एक दूसरे के दुश्मनों की मदद भी नहीं करेंगे, ٹھیک ہے نا, کوئی دشمن اگر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوگا تو یہودی اس کی مدد نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوگا تو مسلمان جو ہے وہ اس کی مدد نہیں کریں گے. تو اس طرح سے ایک امن کا اگریمنٹ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے ان قبیلوں کے ساتھ کر لیا, ٹھیک ہے نا. یہ قبیلے جو بڑے بڑے تھے, ان میں سے ایک تھا بنو نضیر, ایک تھا بنی قینقاع, اور ایک تھا بنی قریظہ, ٹھیک ہے. یہ تین بڑے بڑے قبیلے تھے. تو بدر کے بعد 15 دن جب شوال کے گزر گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان میں سے ایک قبیلہ بنی قینقاع کے پاس گئے, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جا کر کے نا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور ان کو واعظ کیا, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام تو یہ تھا نا کہ لوگوں کو کفر سے توبہ کی طرف بنائیں, مسلم اسلام کی طرف بلائیں, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام تو کرنا تھا. ہاں بھائی, جنگ نہ لڑنے کا وعدہ کر لیا تھا ان کے ساتھ, اگریمنٹ کر لیا تھا, لیکن یہ تو اگریمنٹ نہیں کیا تھا کہ میں تم کو اسلام کی طرف ہی بلاؤں گا, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کیا اور ان لوگوں سے ایک خطاب کیا کہ یا معشر الیہود, کہ اے یہود کے گروہ تم اللہ سے ڈرو, ٹھیک ہے. اور جیسے بدر میں قریش پر خدا کا عذاب نازل ہوا ہے نا, کہیں اسی طرح تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ تم بھی تو بیسیکلی شرک ہی کر رہے ہو, کفر ہی کر رہے ہو, تمہارے اوپر کہیں اللہ کا عذاب نہ نازل ہو جائے, اس لیے تم اسلام لے آؤ, ٹھیک ہے. اور تحقیق کے تم لوگ مجھے بالکل پہچانتے ہو نا, تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پتہ تھی کہ یہ یہودیوں کے پاس ساری نشانیاں موجود ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی, تو تم خوب پہچانتے ہو کہ میں بالیقین اللہ کا نبی ہوں اور اس کا رسول ہوں. اس بات کو تم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہو اور اللہ نے تم سے اس کا عہد لیا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کے اندر باقاعدہ ان کو بتایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور ان سب سے عہد لیا ہے کہ جو آخری نبی آئیں گے تو تم لوگ اس کے اوپر ایمان لے کر کیا ہوگا. تو یہودیوں نے اس کا اقرار کیا تھا اپنے پیغمبروں کے سامنے کہ ہاں جب آخری نبی آئیں گے تو ہم ان کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس ایمان کا یاد دلایا, ٹھیک ہے. لیکن جب یہ بات ان لوگوں نے سنی بنی قینقاع کی یہودیوں نے, تو یہ تو نا مشتعل ہو گئے, یعنی ان کو تو بڑا غصہ آ گیا, ٹھیک ہے. اور انہوں نے جواب دیا کہ کوئی نہیں, آپ اس دھوکے میں نہیں رہیے گا کہ ہم جو ہے نا وہ آپ سے ڈر جائیں گے. اور جس طرح سے آپ نے ان قریش کو ہرا دیا جن کو تو لڑنا بھی نہیں آتا, رائٹ, وہ تو ایک جو ہے نا تجربے کار اور ایک نا واقف قسم کی قوم ہے, ان کو کوئی تھوڑی لڑنا وڑنا آتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر ان کو ہرا دیا نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں بھی ہرا دیں گے, ہمیں آتا ہے لڑنا. اور یہ واقعی بڑے جنگجو تھے, بڑا ان کو جو ہے نا زبردست قسم کا فائٹنگ آتی تھی یہودیوں کو, ٹھیک ہے. تو اگر اللہ کی قسم, کہتے ہیں اللہ کی قسم, اگر ہم سے آپ کا مقابلہ ہوا نا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم تو مرد ہیں, یعنی ہم تو لڑنا جانتے ہیں, ہم تو بڑے اسٹرانگ لوگ ہیں. تو اس کے اوپر نا اللہ تعالیٰ نے پھر ایک قرآن مجید کی آیت بھی نازل فرمائی اور فرمایا کہ قد کان لکم آیتن فی فئتین التقتا, ٹھیک ہے. تو بہرحال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کا یہ جواب سنانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی یہ تو مجھے لڑنے کی دھمکی, میں تو ان کے پاس آیا تھا ان کو دعوت دینے کے لیے. کس کی طرف دعوت دینے کے لیے؟ جنت کی طرف دعوت دینے کے لیے, ٹھیک ہے. کوئی ان کو لڑنے وڑنے کے لیے کہنے کے لیے تو نہیں آیا, لیکن یہ تو لڑنے کے اوپر دھمکیاں دینا شروع ہو گیا کہ آپ ہم سے لڑیں گے اور ہم جو ہے نا وہ غالب آ جائیں گے اور آپ ہمیں ان کی طرح نہ سمجھے, اس طرح کی انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پھر ان کو کہا کہ بس, اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکچولی نہیں کہا, ان لوگوں نے کہا کہ یہ بس ہم نے تو اب آپ سے جنگ ہی لڑنی ہے, ٹھیک ہے. تو گویا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو اگریمنٹ تھا اس اگریمنٹ کو ختم کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 15 شوال سے لے کر کے ذی قعدہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر کے آئے اور 15 شوال سے ان کا محاصرہ شروع کر لیا, ٹھیک ہے. ان کے جو قلعے تھے نا ان کو سراؤنڈ کر لیا اور وہاں پر ذی قعدہ تک رہے, ذی قعدہ کے مڈل تک رہے, ٹھیک ہے. 15 ذی قعدہ تک. شوال کے بعد کیا آتا ہے؟ ذی قعدہ, ٹھیک ہے. اور ذی قعدہ کے بعد ذوالحجہ آخری مہینہ آتا ہے. تو 15 شوال تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا محاصرہ کیا پورا ایک مہینہ. ایک مہینے کے اندر ان کی دم نکل گئے, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا سارے کے سارے باہر نکل آئے, ٹھیک ہے, ہم سرنڈر کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مسلمانوں سے کہا کہ ان لوگوں کو باندھ, ان کے ہاتھ واتھ جو ہے وہ مشکوں سے, یعنی مشکیں ان کی باندھ دو. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو ہم نے لاسٹ کلاس میں بتایا تھا کہ جب مسلمان فتح حاصل کر کے مدینہ منورہ واپس آئے تھے तो उस वक्त जो है ना कुछ ऐसे काफिर, ठीक है, जो कि अरब थे, यहूदियों में से नहीं थे, जो कि अरब थे, वो काफिर जो है ना वो झूठ मूठ के मुसलमान हो गए थे, राइट, यानी मुनाफिक हो गए थे। उन्होंने ऊपर से कहना शुरू कर दिया मुसलमान हो चुके हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, लेकिन अंदर से वो काफिर ही थे, ठीक है। इनका लीडर कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई, ठीक है, इब्ने सलूल इसका नाम था, अब्दुल्ला बिन उबई इब्ने सलूल। इसने जो है ना वो रोना धोना शुरू कर दिया कि अल्लाह के नबी इनको आप नहीं मारिएगा, ये तो हमारे हलीफ हैं, ये तो हमारे दोस्त हैं, इनको आप कत्ल नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन उबई की बात मान ली और इनको कत्ल नहीं किया, बल्कि इनको जो है ना वो यहाँ से बेदखल कर दिया, जिला वतन कर दिया, तुम यहाँ से निकल जाओ, ठीक है। तो फिर इनका जो माल गनीमत था वो सारा का सारा मुसलमानों को मिला, यानी इनके जो भी असबाब हुआ थे मुसलमानों को मिल गए। जी, नबी अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला बिन उबई की बात जो है ना वो बहुत माना करते थे ना, ये एक बहुत, यानी इसको कहते हैं इस्लामी सियासत, इस्लामिक पॉलिटिक्स, ठीक है। कि अगरचे कि नबी अलैहिस्सलाम को अंदाजा तो था कि ये जो है ना ये ऊपर से मुसलमान बना हुआ है, अंदर से मुसलमान नहीं बना हुआ, ठीक है, लेकिन दूसरे लोगों को ये बात पता नहीं थी कि ये ऊपर से बना हुआ है, अंदर से ये झूठ बोल रहा है, ये सब लोगों को नहीं पता था। कुछ कुछ लोगों को नबी अलैहिस्सलाम ने बताया था, जैसे अबू बकर सिद्दीक रतान को इस तरह की बातें पता होती थी, करीबी और एक दो सहाबी सलमान फारसी रतान को पता होती होंगी, लेकिन ओवरऑल सबको नहीं पता थी। ओवरऑल तो ये बहुत अच्छी बातें किया करते थे, बहुत अपने आप को अच्छा बना के पेश किया करते थे, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो इस वजह से इनके साथ जो है वो बस ऐसी, हाँ ठीक है बस सही, तुम जो कह रहे हो बस ठीक है, ठीक है। तो आप सरसरम जो है ना इनकी बातों को जब इस तरह से आके करते थे ना, तो आप उनकी बातों को रिजेक्ट नहीं किया करते। इसका बहुत फायदा था असल, इस ये क्यों करते थे, क्योंकि इसका एक मुसलमानों को बहुत फायदा होता था। ये फायदा इंशाल्लाह बाद में जाकर के हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो सियासत में इस तरह से कभी जो लोग ऐसे होते हैं जो कि अंदर से आपके दुश्मन होते हैं, लेकिन ऊपर से जो है ना वो आपके साथ बड़े हसीन और बड़े अच्छे से मुलाकात कर रहे होते हैं, आपसे बातें कर रहे होते हैं, तो चूंकि आपको एक एक गवर्नमेंट चलानी होती, ठीक है, आपको जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को दुरुस्त करके रखना पड़ता है ना, जो आप लीडर हैं किसी मुल्क के, तो अब उस मुल्क के अंदर आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, ऐसा ना हो कि जी फसाद शुरू हो जाए, लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाए, हर वक्त जो है वो एक खौफ का आलम रहे, ये आप नहीं चाहते अपने मुल्क के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे भी लोगों के साथ, ठीक है, जो कि झूठ बोल रहे हैं लेकिन कम अज कम ऊपर से आपसे लड़ तो नहीं रहे ना आकर के, ठीक है ना, तो उनके साथ फिर आपको इस तरह का नरमी वाला मामला रखना पड़ता है। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये बात सिखाई है, ठीक है, और यही चीज जो है वो आज के दौर के अंदर जो इस्लामी सही मानों में जो मुसलमान हुक्मरान होते हैं या जो उलमा अकाबरीन होते हैं वो भी ऐसा ही आज के दौर के अंदर करते हैं। उनको पता होता है कि ये शख्स जो है ना अंदर से हमसे नफरत करता है लेकिन ऊपर से हमारे साथ दोस्ती दिखा रहा है, तो वो उनके साथ फिर दोस्ती वाले मामला करते हैं, ठीक है। दोस्ती मामला मतलब ये नहीं कि उनसे मोहब्बत करना शुरू कर देते, हर किसी ने मोहब्बत नहीं करना शुरू करते, बिल्कुल नहीं मोहब्बत करना शुरू करते, लेकिन उनके साथ हाँ भी किसी मीटिंग के अंदर उनके साथ शरीक हो गए, कोई उस किस्म की कॉन्फ्रेंस हुई तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो लोग साथ आ गए, है ना, कोई गवर्नमेंट के सामने फॉर एग्जांपल उलमाए कराम को कोई कोई सजेशंस लेकर के जानी है तो उन लोगों को साथ लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो इस किस्म के काम उलमाए कराम करते हैं, और ये कहाँ से मिला, ये नबी अलैहिस्सलाम सलाम की सुन्नत से ये चीज उन्होंने सीखी है। जी हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल की ये बात मान ली और उन लोगों को फिर कहा कि अच्छा तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हें तुम्हारी अहद शिकनी के ऊपर ना हम तुम्हें कतल नहीं करेंगे। अच्छा, एक सहाबी थे हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला, वो फरमाते हैं कि बनी कैनुका से ना मेरे बड़े दोस्ती के ताल्लुकात थे, ठीक है ना, पुराने जमाने में उन लोगों के ताल्लुकात हुआ करते थे यहूदियों के साथ। तो जब नबी अलैहिस्सलाम सलाम के साथ उन लोगों ने ऐसा सलूक किया ना कि भाई वो बहुत बदतमीजी भी करी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो ऐलान जंग भी कर दिया कि हम तो आपके साथ लड़ेंगे और आप हमें ऐसा पाएंगे और ये वो, तो उसके बाद जो है ना मैंने नबी अलैहिस्सलाम सलाम से जाकर कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके दुश्मनों से बेजार हूँ, जो भी आपका दुश्मन है ना, बेशक मेरा पहले वो साथी था, यानी मेरा एक तरह से वो उसके साथ जो है ना वो एक एग्रीमेंट थी, हम जो है वो मिलके कुछ काम किया करते थे, इसको हलीफ बनना कहते हैं, पार्टनर एक्चुअली, ठीक है ना। पार्टनर का मतलब ये नहीं होता कि आपका दोस्त है ना, आज वो कुछ भी रहते है ना, पार्टनर बनाना भाई, जैसे आप किसी जगह जाते हैं कोई गेम खेलने के लिए, ठीक है ना। आप बैडमिंटन खेलने के लिए जाते हैं, क्या आप अकेले बैडमिंटन खेल सकते हैं? बैडमिंटन अकेले नहीं खेल सकते। तो एक बंदा आ गया जो कि क्रिश्चियन था, या जो हिंदू था कोई, या कोई ऐसी कोई होगा, आपको नहीं पता उसके बारे में। तो आपने कहा भाई आप जरा मेरे साथ बैडमिंटन खेलेंगे, ठीक है, ताकि जब मैं चिड़िया मारूं तो आगे से वापस भी तो आए ना भाई। चिड़िया मारेंगे, चिड़िया गई, अब आप क्या करेंगे, इतनी चिड़ियां कैसे लेकर के आएंगे कि आप बैडमिंटन खेलते रहे, ठीक है ना। यू नीड अ पार्टनर, ठीक है। तो वो शख्स तैयार हो गया, उसने कहा हाँ ठीक है मैं आपका पार्टनर बन जाता हूँ, बैडमिंटन पार्टनर बन जाता हूँ, ठीक है, या टेबल टेनिस के अंदर मैं आपका पार्टनर बन जाता हूँ, ठीक है, या क्रिकेट खेलने के अंदर मैं बॉलिंग करवा दूंगा, आपका पार्टनर बन जाता हूँ, ठीक है। तो ये बंदा हो गया आपका पार्टनर। लेकिन क्या हर पार्टनर जो है, अच्छा अभी अशरफ ने सवाल किया था तो आप थे नहीं, आप पार्टनर के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, कि बैडमिंटन खेलने के लिए गए तो अब अकेले तो बैडमिंटन नहीं खेल सकते ना, तो यू नीड अ पार्टनर। तो एक बंदा वहां से गुजर रहा था, नॉन मुस्लिम था या कोई ऐसे ही बस आम तो कोई इंसान था, आपने कहा भी आप मेरे पार्टनर बन सकते हैं ताकि मैं बैडमिंटन खेल सकूं। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपका पार्टनर बन जाता हूं, मैं भी खेल लूंगा, आप भी खेलिएगा। तो पार्टनर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको अपना दोस्त बना लिया। दोस्त नहीं आप हर एक को बना सकते, पार्टनर आप किसी को बना सकते हैं, दोस्त नहीं बना सकते, ठीक है ना। दोस्त की तो शरायत है, ईमान वाला होना जरूरी है, ठीक है ना। और ईमान वाले के वाले के बाद ये भी कि अच्छा ईमान वाला नेक बंदा, अगर गुनाहगार है, गुनाहों के अंदर जिंदगी गुजार रहा है, ये तो मुझसे अच्छा है क्योंकि हर मुसलमान मुझसे अच्छा है तो मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ। सुबह को बात हो रही थी है ना कि अपन हर मुसलमान को अपने से अच्छा समझो, तो इसका मतलब क्या है, हर मुसलमान से दोस्ती करो, चाहे वो गंदी गंदी फिल्में देखता हो, चाहे वो डांस करता हो, चाहे वो झूठ बोलता हो, चाहे वो दूसरों को मारता हो, हर मुसलमान उससे अच्छा है तो चलो उससे दोस्ती कर लेते हैं। नहीं, वो अलग मतलब था उसका। हर मुसलमान उससे अच्छा है का मतलब क्या कि आपके अंदर एरोगेंस ना आए, आप गुरूर में मुबतला ना हो, तकबर में मुबतला ना हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप कहें कि कोई बात नहीं, अगर झूठ बोलता है, गीबत करता है, गंदी की चीजें देखता है तो चूंकि मुझसे अच्छा है इस वजह से मैं दोस्ती कर लूंगा, है ना। बात समझ आ रही है? आ रही है बात समझ? ठीक है, नहीं दोस्ती नहीं कर सकते आप, बेशक उसको अपने से अच्छा समझते रहें, दोस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। दोस्ती क्यों नहीं कर सकते ये भी बता दें। नबी अलैहिस्सलाम ने बुरी सोबत से मना किया ना, ठीक है, और बुरी सोबत से मतलब दोस्ती कर लेना, ठीक है ना। दफ्तर के अंदर आप जॉब करते हैं तो आपके बराबर में कोई नॉन मुस्लिम बैठा हुआ है, आपके बराबर में कोई झूठा बैठा हुआ है, आपके बराबर में कोई, तो आप तो गंदे लोगों की सोबत में बैठे हुए ऑफिस के अंदर, राइट। आप स्कूल अगर जाते हैं तो स्कूल के अंदर बराबर में ये बैठे हुए तो आप बुरी सोबत में बैठे हुए हैं, तो आप क्या करें भाई। नहीं, बुरी सोबत का मतलब ये नहीं कि आप बैठे हुए और आपके चारों तरफ वैसे लोग बैठे हुए, बुरी सोबत का मतलब ये आपने उनसे दोस्ती लगा ली है, इसकी इजाजत बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आपसे पूछना असल में ये नहीं था, बल्कि पूछना यह था कि दोस्ती क्यों नहीं कर सकते, पार्टनर तो बना सकते हैं, दोस्ती क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी आपने गलत नहीं कहा, सही कहा है जी। आप सत्संग ने मना किया है, बात बिल्कुल सही है जी। और उनकी आदतें आपके अंदर आ जाएंगी, दोस्ती करने से आ जाएंगी, बिकॉज ए फ्रेंड फॉलोज देयर फ्रेंड्स रिलीजन। माशाल्लाह ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि दोस्त तो दोस्त के दीन पर होता है, बिकॉज दोस्ती एक मोहब्बत का रिश्ता होता है। यहाँ पे जवाब आ गया, आप लोग तो हम पूछते ही रहते हैं, ऑनलाइन आ जाते हैं तो उनका भी कुछ हक बनता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि दोस्ती का मतलब क्या होता है। ताल वाओ सा सीन ताल ता दाल वाओ सीन ता एफ आर आई ई एन डी फ्रेंड, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दोस्त, दोस्त मीन्स फ्रेंड। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट ट्रांसलेशन, I'm not asking for translation, ठीक है ना। मतलब इसका ये होता है मोहब्बत, लव, है ना, लव का रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता, ये होता है दोस्ती। पार्टनरशिप डज नॉट मीन मोहब्बत का रिश्ता, पार्टनरशिप मीन्स यू नीडेड समवन टू डू अ जॉब, गेट सम वर्क डन, राइट। चाहे वो बैडमिंटन खेलने वाला वर्क हो, चाहे वो एक्सरसाइज करने वाला वर्क हो, चाहे वो टेबल टेनिस खेलने वाला वर्क हो, चाहे वो कॉलेज के अंदर असाइनमेंट सबमिट करने वाला वर्क हो, राइट, चाहे वो ऑफिस के अंदर कोई प्रोजेक्ट करने वाला वर्क हो, ये तो वर्क है, ये तो जॉब है, ये तो एक नीड है, राइट. तो आप तो नीड के लिए किसी को पार्टनर बना लेते हैं, दोस्ती को थोड़ी करते हैं. दोस्ती तो बिल्कुल अलग चीज है ना, राइट. दोस्ती हराम है, किसी काफिर के साथ दोस्ती हराम है, ठीक है. और किसी मुसलमान जो कि गुनाहों की जिंदगी में पड़ा हुआ है उसके साथ दोस्ती मकरूह है, ठीक है ना. क्योंकि जब आप दोस्ती करते हैं इट मींस आपने उससे मोहब्बत का रिश्ता बना लिया, ठीक है. और मोहब्बत का रिश्ता जब बन जाता है ना, तो मोहब्बत किन के दरमियान होती है, हार्ट्स के दरमियान, ठीक है. तो अब इस हार्ट के अंदर अगर गुनाह भरे हुए हैं तो वो आपके हार्ट में, वहां से गुनाहों की मोहब्बत आपके हार्ट में आनी शुरू हो जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी, आनी शुरू हो जाएगी. अब आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है ना. अब आप उसको नहीं रोक सकते, ठीक है. इस वजह से अपने हार्ट को तो बचाना है ना भाई गुनाहों से. कयामत के दिन अल्लाह ताला ने क्या देखना है, आपकी शक्ल देखनी है, आपकी आंखें देखनी है, कितनी खूबसूरत आंखें लेकर आए मेरे पास, आ जाओ बेटा मेरा बंदा, आ जाओ जन्नत में. इतनी अच्छी आंखें लेकर आया है, इतने अच्छे कान लेकर गया है, राइट, इतना अच्छा कद लेकर आया है. नहीं, अल्लाह ताला ने क्या देखना है, वयंजुरु इला कुलूबिहिम व अला आमालिहिम, आपके कुलूब को देखना है. तो किसी ऐसे इंसान से दोस्ती कर ली जिसके कुलूब के अंदर गुनाहों की मोहब्बत भरी हुई थी, तो आपका कल्ब तो फिर अल्लाह ताला को दिखाने के काबिल नहीं रहा ना, ठीक है ना. तो उसके इस कल्ब के साथ फिर जन्नत वन्नत कोई नहीं मिलने की है, ठीक है ना. फिर उस दिन दाढ़ी काम नहीं आएगी, दाढ़ी अबू जहल की भी थी, ठीक है ना, उस दिन कोई दाढ़ी काम नहीं आएगी, कल्ब काम आएगा, ठीक है. तो उबैदा बिन सामित ने कहा कि मेरे पार्टनर्स तो ये थे, दोस्त तो मेरे नहीं थे, पार्टनर्स थे, लेकिन अल्लाह आपके जब से दुश्मन बने ना, तो आप तो पार्टनरशिप भी खत्म करता हूँ, मैं इनसे बेजारी का ऐलान करता हूँ और अल्लाह के रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आता हूँ, ठीक है. अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान को अपना दोस्त और हलीफ बनाता हूँ और काफिरों की दोस्ती और अहद से मैं बिल्कुल बरी और अलहदा हो जाता हूँ, ठीक है. तो ये एक वाकया हो गया कबीला बनू कैनुका का, यहूदियों का जो कबीला. जी किसी की पसंदीदगी है, क्या वो उसको पसंद करता हो, हम उसे पसंद करते हो तो हमें उसे तौबा कर लेनी चाहिए, ठीक है. तौबा जिस तरह गुनाह से तौबा करते हैं ना, ये भी एक गुनाह का काम है. काफिर को आप कैसे पसंद कर सकते हैं, इट्स नॉट अलाउड, ठीक है. तो काफिर को पसंद किया है तो उससे तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला माफ कर देंगे, और अगर तौबा नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला कहेंगे उसी के साथ गो विद हिम, गेट लॉस्ट, ठीक है. दिस इज एज सीरियस एज दैट. जी सर, अब ये आपकी सीरत की क्लास है, अब इसके अंदर फिका का एक डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वो बाद में भी पूछ लेगा. क्योंकि जब आप किसी को दोस्त बनाते हैं तो उसके जैसे काम करते हैं. हाँ, अलमरु अला दीनी खलीली ही, ठीक है. और अलमरु खलीली, अलमरअतु अला दीनी खलीलती ही, ठीक है ना. औरत भी अपने औरत की दोस्त के ऊपर ही होती है. हाँ, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात लिखी हजरत के, बुरा दोस्त शैतान से भी ज्यादा बुरा, ठीक है. शैतान हाथ पकड़ के गुनाह नहीं करवाता, बुरा दोस्त हाथ पकड़ के गुनाह कर, ठीक. अच्छा अच्छा, एक छोटा सा और गजवा हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम सलाम ने इसी महीने में, शवाल के महीने में ना, नहीं हाँ इसी 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 महीने में कुछ उलमा के नजदीक, नहीं 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 अच्छा, अगला वाकया अहम जो है वो चले वो करके फिर आज की क्लास खत्म करते हैं. वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सबसे छोटी बेटी जो रह गई थी ना, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, कौन थी, हजरत फातिमा, तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो उनकी शादी फरमा, ठीक है ना, इसी साल सेकेंड हिजरी के अंदर, और कुछ उलमा के नजदीक जो है वो ज़ुलहज्जा के महीने के अंदर शादी फरमाई आपकी, ठीक है. तो उसके लिए नबी अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म आया, ठीक है, कि अली से شادی کریں گے. ٹھیک ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پیغام بھیجا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کی بیٹی سے نا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کیا. ٹھیک ہے, اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ آپ کی بیٹی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار کر لی. اور کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ سے سن فرمایا کہ میں ان کے لیے اللہ کے حکم کا منتظر. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو آپ کے پاس آیا وہ کیا, علی رضی اللہ تعالیٰ سے ان کی شادی. ٹھیک ہے, علی رضی اللہ عنہ کون تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن تھے, بھائی نہیں تھے, کزن تھے. کن کے بیٹے تھے, ابو طالب کے. رائٹ, ابو طالب کے چار بیٹوں کا نام آتا ہے. سب سے بڑے بیٹے کا نام کیا تھا, طالب, جن کی وجہ سے ان کا نام ابو طالب, کیونکہ سب سے بڑا جو بچہ ہوتا ہے نا, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, تو اس سے پھر آپ کی کنیت پڑ جاتی. ٹھیک ہے, تو ابو طالب کا نام بھی طالب کی وجہ سے تھا. طالب کے بعد جو ہیں وہ عقیل تھے, یا ہاں عقیل تھے, اور عقیل کے بعد جو ہے وہ جعفر تھے, اور جعفر کے بعد جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, طالب جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن عقیل بھی مسلمان ہو گئے تھے, اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی مسلمان ہو گئے تھے, اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ تو بالکل ابتدا کے اندر مسلمان ہو گئے تھے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فرمائی. جعفر بن طیار. ٹھیک ہے, جعفر طیار, بن طیار نہیں, جعفر طیار, کیونکہ جب یہ شہید ہو گئے تھے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر جو ہے وہ جنت کے اندر اڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس وجہ سے ان کا نام جو ہے جعفر طیار, جعفر دا ایئر پلین, یہ تو جنت کے اندر فلائٹ موڈ میں رہتے ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام نے جب علی رضی اللہ عنہ کو کہا نا کہ بھائی اب آپ کے بارے میں ہو گیا حکم, تو اب آپ کے ساتھ شادی ہونی ہے, تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی, نہیں جب ان کو کسی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے پیغام ملا یا عمر رضی اللہ عنہ کے پیغام ملا کہ بھی اب شادی ہونی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بھائی میں علی رضی اللہ عنہ جو تھا نا, یہ ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں تھا, بالکل کنگال. رائٹ, کچھ ان کے پاس پیسے ویسے کچھ نہیں ہوتے تھے, عجیب فقیر قسم کے آدمی, درویش. ٹھیک ہے نا, کچھ ہوتا ہی نہیں تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے, تو ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے نبی علیہ السلام جی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی میں کیسے کروں, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ جو بدر کے اندر تمہیں ایک زرہ ملی تھی نا, تم نے کسی کو قتل کیا تھا بدر میں, تو ان کی زرہ جیسے ملی تھی سب لوگوں کو اس طریقے سے مال غنیمت, تو وہ زرہ کدھر ہے؟ ہاں وہ تو ہے میرے پاس. فرمایا کہ اس زرہ کو ہی جو ہے نا تم شادی کے اندر جو پیسے دیتے ہیں, مہر دیتے ہیں, مہر ہوتا ہے نا, عورت کا ایک مہر مقرر کیا جاتا ہے جو کہ جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو پھر دیتا ہے, اس کو مہر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ذرا کوئی جو ہے وہ تم بطور مہر کے استعمال کر لینا. تو علی تعالیٰ نے فرمایا, علی تعالیٰ نے ایک کام کیا, آپ گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جو کہ ایک بہت بڑے ٹریڈر تھے اور بڑے امیر مسلمان تھے, تو ان کو جو ہے نا یہ ذرا بیچ دی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے علی رضی اللہ عنہ کو 480 درہمز دیے اس ذرا کے بدلے. ٹھیک ہے, تو علی رضی اللہ عنہ نے پھر یہ پیسے دیے, اور اب آپ آئے حضرت نبی علیہ السلام کے سامنے کہ اللہ کے نبی مجھے ذرا کے بدلے 480 درہم مل گئے. تو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا ہو گیا, اب تم اس سے جا کر کچھ خوشبو خرید دو اور کچھ کپڑے وپڑے کا انتظام کر لو. ٹھیک ہے, تمہاری شادی ہونے والی ہے بھائی, ٹھیک ہے, کپڑے کا خوشبو کا انتظام کر لو. تو نبی علیہ السلام کے کہنے پر علیہ تعالیٰ نے خوشبو اور کپڑوں کا انتظام کر لیا. پھر یہ لوگ جو ہیں وہ جب شادی کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رخصت فرما دیا, اور رخصت کرتے ہوئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ جہیز بھی دیا. ٹھیک ہے نا, جو پیرنٹس برائٹ کے پیرنٹس جو اس کو چیزیں دیتے ہیں وہ جہیز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جہیز کیا تھا بھائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا, ایک کوئلٹ لحاف, ٹھیک ہے, اور ایک چمڑے کا گدا. ٹھیک ہے, ایک گدا تھا جو کہ چمڑے کا بنا ہوا تھا, یعنی ایک تکیہ ٹائپ کی کوئی چیز. ٹھیک ہے, تکیہ نہیں بلکہ گدا جو کہ نیچے بچھاتا ہے نا, تو وہ چمڑے کا تھا, لیکن اس کے اندر جو ہے نا روئی بھی نہیں تھی, کہ روئی ہوتی ہے نا نرم نرم, آپ گدے کے اوپر لیٹے ہیں تو ذرا سافٹ سافٹ سی ہوگی, آپ کو کمفرٹیبل نیند آئے گی. ٹھیک ہے, نہیں اس کے اندر روئی نہیں تھی, اس کے اندر کیا تھا, اس کے اندر کھجور کے درخت کے پتوں کی چھال تھی اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو وہ پتے جو ہوتے ہیں نا وہ تو چبھتے ہیں, آپ کسی کھجور کے درخت کے برابر سے گزرے نا, جو بھی چھوٹا ہے تو وہ چبھے گا آپ کو ایسا کر کے آگے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹی کو جو جہیز مل رہا ہے تو اس کے اندر درخت کی چھال بھرا ہوا گدا مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دو چکیاں, چکیاں کیا ہوتی ہیں, وہ چھوٹی سی ایک مشینری ہوتی ہے جس کے اندر گندم وغیرہ اس طرح کی چیزیں پیس کر کے نا پھر آپ آٹا بناتے ہیں, اور اس آٹے کے پھر آپ روٹی بناتے ہیں. تو دو چکیاں دی تھیں, اور ایک مشکیزہ جس کے اندر پانی بھرا جاتا ہے, ठीक है, एक बड़ा सा सैक होता है लेदर का, उसके अंदर पानी भर के लोग लेकर आया करते, तो उसको मिश्कीजा कहते हैं। और दो मिट्टी के घड़े, मटका जिसको कहते हैं, दो मटके मिट्टी के बने, ठीक है। ये फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जहेज था। फिर उसके बाद अली रज़ी अल्लाह अन्हा जो है, जब फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को लेकर रुखसत हुए, तो उस वक्त जो है ना वो एक 480 दिरहम तो थे ना, उसमें तो कुछ से खुशबू खरीद ली थी, कुछ से जो है वो कुछ कपड़े खरीद लिए थे, बाकी जो बच गए तो उससे उन्होंने एक मकान किराए पे ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक और भी बात लिखी हुई है कि एक सहाबी हारसा बिन नोमान रज़ी अल्लाह अन्हा जो थे ना, उनका मकान फिर हदीये में इनको मिल गया था, अली रज़ी अल्लाह अन्हा को, हारसा बिन नोमान रज़ी अल्लाह अन्हा का मकान अली रज़ी अल्लाह अन्हा को मिल गया। तो आप जो है ना अपनी बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ जो है वो उस मकान के अंदर सेटल हो गए, ठीक है। तो ये जो है वो सेकंड हिजरी के वाकयात मुकम्मल हुए। एक छोटा सा गजबा भी हुआ, गजबा सुवैक, वो कोई उसमें कोई ज्यादा तफसील नहीं है, बस चले वो भी मुकम्मल कर लेते हैं ताकि सेकंड हिजरी तो मुकम्मल हो जाए ना आज, ठीक है। बस छोटा सा गजवा हुआ, वो क्या हुआ कि अबू सुफियान को जब पता चला था ना मक्का मुकरमा के अंदर कि हमारे तो इतने सारे लीडर मारे गए और हमें शिकस्त हो गई, तो अबू सुफियान ने एक कसम खा ली उस वक्त, अल्लाह की कसम, अल्लाह से ही वो बात करते थे ना ये लोग, जैसे कल बात हो रही थी अबू जहल ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, उसी तरह अबू सुफियान ने अल्लाह की कसम खा ली। वो क्या कि मैं उस वक्त तक नहाऊंगा नहीं, गंदे लोग तो थे ना काफिर, ठीक है, मैं उस वक्त तक नहीं नहाऊंगा जब तक मदीना मुनव्वरा के ऊपर अटैक ना कर दूं, ठीक है, उस वक्त तक नहाऊंगा। अब उसको थोड़े दिन में बाद में तो वो मुसलमान हो गए थे, साहबी बन गए थे, लेकिन उस वक्त तो साहबी नहीं थे ना, तो उनको फिर बाद में गर्मीशन भी लगनी शुरू हुई होगी, कुछ मैल कुचैल ने जरा तंग किया ना, उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, मैं नहाऊं तो कैसे नहाऊं, कसम खा ली है मैंने। तो उन्होंने ना इसका एक हल निकाला, उन्होंने ये किया कि कुछ लोगों को जमा किया 200, ठीक है, 200 हॉर्स राइडर्स को जमा किया और मदीना मुनव्वरा की तरफ वो रवाना हुए। रास्ते में जो है ना एक बाग पड़ता था मदीना मुनव्वरा के करीब, ठीक है, मकाम औरैज अरीस था, तो मदीना मुनव्वरा से वो 3 miles दूर था, ठीक है। तो वो उस बाग के ऊपर पहुंचे, खजूर का बाग था, उसके अंदर घुसे तो वहां पर ना उनको 2 लोग नजर आए, एक जो है वो अंसारी सहाबी थे और एक जो है ना उनका कोई एक रेंटेड मुलाजिम था, वो दोनों वहां पे बैठ के काम कर रहे थे हजूर के बाग के अंदर। इन्होंने जो है ना 200 सवारों ने उन 2 बंदों के ऊपर हमला किया, उन दोनों को जो है वो शहीद किया और भाग गए। उन्होंने कहा भी हमने तो मदीना पे हमला कर लिया, ठीक है, तो हमारी कसम हो गई पूरी, अब हम नहा सकते, ठीक है। तो उसने फिर उसके बाद नहाया। अच्छा, नबी अलैहिस्सलाम को जब इस बात का खबर की खबर हुई ना कि उन्होंने इस तरह से हमारे लोगों को मार दिया है और उस तरह से वो भागे, तो आप जो है वो 200 मुहाजरीन और अंसार को लेकर के उनके पीछे के पीछा करने के लिए निकले, ताकुब में निकले, ठीक है। लेकिन उस वक्त तक जो है ये लोग वहां से तो भाग चुके थे, लेकिन इनके हाथ में जो ये जो साथ लेकर के आए थे ना खाने पीने के लिए रास्ते में ना, वो सत्तू होता है, बहुत ही पता नहीं क्या एग्जैक्टली चीज होती है सत्तू, ठीक है, जौ, जौ का बना हुआ होता है, जौ का छिलका, उसको सत्तू कहते हैं, ठीक है। तो लोग जो है वो सत्तू फाँक करके ना अपना पेट भर लिया करते हैं और बड़ी उससे फायदा हो जाता है, आपकी भूख मिट जाती है, तो बहुत हल्का भी होता है जाहिर है क्योंकि वो छिलका होता है सिर्फ। तो ये ना अपने साथ बहुत सारा सत्तू लेकर के आए थे कि रास्ते में हम फाँकते जाएंगे और हमें किसी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने क्या किया कि जब भागे ना और नबी अलैहिस्सलाम पीछे से आ रहे थे, तो उन्होंने सत्तू के जो थैले थे ना वो नीचे जमीन में फेंक दिए, ठीक है ना, वो थैले फेंक करके भाग गए। जब मुसलमान गए वहां पे पहुंचे तो उन्होंने वो सत्तू के जो थैले थे ना उनको कब्जे में ले लिया। इस वजह से इस गजवे का नाम जो है वो गजवाए सत्तू पड़ गया, ठीक है। सत्तू को अंग्रेजी में जो है वो तस्वीर कहते हैं, क्या कहते हैं, गजबे का नाम तो गजबे तस्वीर पड़ गया, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली सत्तू के लिए जो है वो क्या वर्ड होता है, सत्तू वाला गजबा, गजबे तस्वीर नहीं, सुवैक, सुवैक, सॉरी, सुवैक, गजबा तो सुवैक, तस्वीर नहीं, सुवैक, ठीक है। तो ये जो है वो आखिरी इंसिडेंट था, इसके बाद जो है वो सेकेंड हिजरी खत्म हुआ। अब हम इंशाल्लाह अगली क्लास में थर्ड हिजरी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। जी कोई सवाल है? जी, गज़वे सुवैक वाले नहीं, इस ये गज़वे सुवैक जो है ये तो बस इस वजह से है क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम जो है वो सवारों को लेकर के निकले थे और पीछा किया था। अब वो जो 2 शहीद हुए थे ना वो तो बेचारे काम कर रहे थे, उनका तो कोई लड़ने उड़ने का इरादा नहीं था, कोई इस किस्म की कोई चीज ही नहीं थी। तो ये अब वो बेसिकली शहीद तो हैं लेकिन कोई ऐसे बड़े बड़े दर्जात वगैरह ये सब नहीं है। जी नहीं, जहेज देना जो है वो सुन्नत है, हिंदुओं की रस्म नहीं है, लेकिन टू मच जहेज देना जो है ना, ये हिंदुओं की रस्म भी है और इसकी वजह से बहुत सारी बुराइयां पैदा हो जाती है। ठीक है, तो जो सुन्नत है भाई उसको सुन्नत के दर्जे में रखो, उसको एक तो फर्ज बना दिए। ठीक है ना, कहीं जहेज अगर नहीं होगा तो शादी नहीं हो सकती। ठीक है, जहेज तो मुसलमानों के यहाँ जो चीज़ अवेलेबल होती थी वो देते थे, ये कि थोड़ी कि वो कर्जा लेकर के जहेज खरीद रहे हैं और या नौकरी कर कर के जो है वो जहेज खरीद रहे हैं उसके बाद दे रहे हैं, ये सब कुछ थोड़ी होता था भाई। ये सारी चीजें थी अवेलेबल, आसानी से थे, खत्म बात। ठीक है, और कोई, व्हेन वाज द एज व्हेन दे गॉट मैरिड? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मेरे पास वक्त एज अवेलेबल नहीं है और जहन में भी नहीं है। किसी को अगर पता हो तो बता सकते हैं, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की क्या एज थी और अली रज़ियल्लाहु अन्हु की क्या एज थी? अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब मुसलमान हुए थे 12 साल उनकी उम्र, तो 12 के ऊपर आप जो है वो 13 और ऐड कर लें तो 25 हो जाती है, फिर उसके ऊपर आप 2 साल और ऐड कर लें, अराउंड 27 ईयर्स गालिबन अली रज़ियल्लाहु अन्हु की एज बनती है। और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो हैं वो भी बेसत से पहले पैदा हो चुकी थी, यानी आपसे समझ 40 साल के थे उससे पहले फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो पैदा हो चुकी थी। तो इस तरह से अगर 13 ईयर्स ये बनाए, 15 प्लस अगर आप 5 भी और मिलाने तो अराउंड 20 ईयर्स शायद, या 19, 18, 20 ईयर्स फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की एज होगी। ठीक है, तो उनकी 27 अराउंड और इनकी 20 अराउंड ये एज होगी। जी, और बेटी होती थी। हाँ, तो ये तो बात हो रही है सेकंड हिजरी ना, तो इसी वक्त जो है वो रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल हो चुका था। ठीक है, उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा के इंतकाल के बाद उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी उस्मान रतानन से कर दी थी। ठीक है, और दो बहनों की एक साथ एक ही जगह पे शादी हो नहीं सकती। ठीक है, तो उम्मे कुलसूम रतानन ऑलरेडी शादी में थी, उनका इंतकाल फिर बाद में जाकर क्यों हुआ ना? उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अगर मेरी एक और बेटी अवेलेबल होती, उस वक्त तक फातिमा रतानन की शादी हो चुकी थी सेकंड हिजरी में। ठीक है, तो उम्मे कुलसूम रतानन की भी शादी हो गई, फातिमा रतानन की भी शादी हो गई, अब तो कोई बेटी बची ही नहीं। फरमाया कि अगर मेरी कोई और होती तो वो उसकी भी शादी में उस्मान से ही कर देता, लेकिन कोई और थी नहीं। 10 साल के थे जब मुसलमान हुए थे। हाँ, 10 साल के थे, कहीं 12 साल लिखा हुआ होगा तो आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है, फिर चले क्लास खत्म करते हैं। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।